जो कि आपकी दिलवाणी के दीपक को आगे आगे ले करके और इस रास्ते पर आसानी से इसे पार कर सकता है। मैंने भी आपकी वाणी रूपी इस दीपक को अपने हृदय में जला लिया है, अब मैं भी इस विपत्ति के रास्ते पर भी आसानी से पार कर दूंगा। प्रच्छन्नः खल मगमयोर् बहुत वो चरित बंत है, माना उसमें ज्ञान बहुत है और बहुत वो चरित बंत है, यदि अनुपम सुख देने वाली भक्ति रूपी कुंजी उसके पास नहीं है। यदि अनुपम सुख देने वाली भक्ति रूपी कुंजी उसके पास नहीं है, मुक्ति कामना करने पर भी ऐसा साधक मोक्ष द्वार पर लगा मोह का ताला क्या खोल सकेगा? नहीं खोल सकता। अगर उसके पास चाबी नहीं है, भक्ति रूपी चाबी नहीं है, तो नहीं खोल सकता। शिवपुर का ये पंथ पाप तम जिस पर छाया, शिवपुर का ये पंथ, देखो शिवपुर को नाम आ गया शिवपुरी की जगह, शिवपुर का ये पंथ पाप तम जिस पर छाया, दुख रूपी पापी ने जिसको विकट बनाया, सो प्रभु सुख से कौन मार्ग पर सहज स्वयं चल पाए, यदि वाणी का दीप निरंतर आगे आगे अपनी दमहर ज्योति नहीं जला। अगर आपकी वाणी की ज्योति आगे आगे नहीं जले तो कौन व्यक्ति है जो इस रास्ते पर आसानी से चल पाए? ये सुपारी चढ़ाने का कोई है क्या? सुपारी के स्थान पर बादाम भी चढ़ा सकते हैं क्या? चढ़ा सकते हैं, ये तो सब फल हैं। बादाम भी फल है, सुपारी भी फल है, श्रीफल भी सबसे श्रेष्ठ फल माना जाता है, तो कई लोग जो है श्रीफल चढ़ाते हैं। पूंगी कहलाती, यहाँ लिखा रहता है ना पूंगी, पूंगी का मतलब है सुपारी। हाँ, तो पूरी बने गोल सुपारी आती, वो चढ़ाते हैं। तो इसमें कोई किसी ने कह दिया क्या कि सुपारी ही चढ़ाना चाहिए शांतिनाथ विधान में? कह दिया होगा किसी ने? अलग अलग व्याख्या करने वाले बहुत लोग हैं आज के जमाने में, सलाहकार बहुत से, एडवाइजर बहुत से, सलाह देने वाले। तो ऐसा कोई कहीं ऐसा नहीं है भैया कि अकेले सुपारी ही चढ़ानी चाहिए, बादाम भी चढ़ा सकते हैं, और जिसकी जैसी गुंजाइश हो गए श्रीफल चढ़ावे तो और उत्तम है, श्रीफल चढ़ा सकता है। महाराज को नमोस्तु। शिवाय दर्शनावरणी कर्म और दर्शन मोहनी कर्म में क्या अंतर? भैया बहुत अंतर है। दर्शनावरणी कर्म से हमारे पांचों इंद्रियों की जो सामर्थ्य है वो ढक जाती है, आँख के द्वारा हम देखते हैं, लेकिन अगर चक्षु दर्शनावरण का उदय हो गए तो थोड़े ही देख पाते हैं अपन। सबके है दर्शनावरण कर्म का उदय, चक्षु दर्शनावरण इतना ही सा दिखता अपन को, और चक्रवर्ती का इतना चक्षु इंद्री का विषय रहता है कि सूर्य के विमान में चैत्यालय के दर्शन कर लेता, अपन कहाँ देख सकते, इतना चक्षु का विषय कहाँ है, क्यों उतना आवरण पड़ा है, अपन को थोड़ा सा आवरण हटा तो ऐसे ही दिख जाता, आंख से थोड़ी दूर का दिख जाता, एक दो मील का दिखता क्या? चक्रवर्ती को इतनी इतनी अधिक क्षमता होती कि उसकी लाखों की सेना में कौन कहां क्या शब्द कर रहा है, क्या बोल रहा है, वो सब उसको स्पष्ट सुनाई पड़ता। बताओ, इतना कर्णेंद्री का विषय। तो अचक्षु दर्शनावरण की वजह से बाकी चार इंद्रियों के विषय सीमित हो जाते, और चक्षु दर्शनावरण की वजह से अकेले चक्षु इंद्री का विषय बहुत सीमित हो जाता, और अवधि दर्शनावरण, अवधि ज्ञानी नहीं अपने को, तो अवधि दर्शनावरण की वजह से केवल दर्शन केवल ज्ञान के पहले सामान्य रूप से सारी सृष्टि का अवलोकन कर लेना वो कहलाता है। चक्षु दर्शनावरण के अभाव में ये हो पाता, और जो हमारे सामान्य अवलोकन को ढक ले तो वो केवल दर्शनावरण कहलाता है। ये दर्शनावरणी कर्म का काम तो ये है, और दर्शन मोहनी क्या है? हमारे भीतर जो सच्ची श्रद्धा है
उसे उत्पन्न नहीं होने देता वो कहलाता है दर्शनावरण, वो कहलाता दर्शन मोहिनी कर्म।
तो एक है मोहिनी कर्म और दूसरा है
दर्शनावरणी कर्म, दोनों में अंतर है। मोहिनी कर्म दो प्रकार का है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी।
वहां पर दर्शन का क्या अर्थ है? दर्शन मोहिनी में श्रद्धा, जो हमारी श्रद्धा को बिगाड़ देवे तो दर्शन मोहिनी, और जो हमारे पांच इंद्रियों के विषय को सीमित कर दे, निद्रा इत्यादि ला दे, वो सब दर्शनावरणी कर्म है। या कि हमारे सामान्य अवलोकन को ढकने वाला दर्शनावरणी और हमारी श्रद्धा को बिगाड़ने वाला दर्शन मोहिनी, दोनों में ये अंतर है। अच्छा पूछ लिया आपने भैया, विवेचना से समझाने का कष्ट करें, बोलने में दोनों एक जैसे लगते हैं, भेद समझ में नहीं आता। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा दोनों में अंतर। इसका बंध किन किन कारणों और निमित्तों से होता है ये तो हमने बता ही था। दूसरे की अच्छी दृष्टि में दोष लगा देना है, दूसरे की आंख इत्यादि फोड़ देना, उसमें लिखा है या कि साधुओं के बीच में भेद करवा देना, हाँ ये सब जो है, हाँ ये भी लिखा उसने, यति जन भेद, यतियों के बीच में भेदभाव करवा देना आपस में। अरे महाराज जी आप तो बैठे हैं, आपके पास कौन नहीं आते, उनके पास तो सब जने जा रहे। अब ले महाराज के मन में जो कीड़ा आ गो, तो उनको संकलेश पहुंचा दिया, इस तरह संकलेश कर दिया। हाँ अरे बहुत दुनिया जिंदगी ने कर दी हमारी, देखा देखा कितना जो है लोग इस तरह से संकलेश करवाते साधु जनों को आपस में। ये तो महाराज जी उनके पास गए थे कि महाराज जी जो है सो करक, सो अपन के मन में आ जाए कि अपन भी कह दो यहाँ करक है, सो उनके पास जाकर कह दे कि महाराज हम गए थे सभी तो आपके बारे में ऐसी कह रहे। अब ले देखो दो ही तरती ऐसा करते हैं लोग, इससे दर्शनावरणी कर्म बनता है ये लिखा उसमें। वो दर्शन मोहिनी क्यों बनता है? केवली शुद्ध संत कर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्त, जो महापुरुष हैं, केवली भगवान हैं, संघ है, चतुर्विध संघ है, इन सब के ऊपर इन सब में जो दोष नहीं है उनमें वो दोष लगा देना अवर्णवाद, इसके द्वारा क्या होता? दर्शन मोहिनी कर्म का बंद हो जाता। दोनों में इतना अंतर है भैया, हमने सवेरे तो इसकी व्याख्या करी थी, आप सुबह नहीं आए होंगे शायद हैं? हाँ अपन वही सवेरे तो देख रहे हैं कि कौन से परिणाम से कौन से कर्म बनते हैं। क्या पुरुषार्थ के द्वारा सोए हुए उपादान को जागृत किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता? तो कह रहे उसकी प्रक्रिया समझाओ, तो प्रक्रिया यही है कि हमारा उपादान क्यों सोया है, हमारी कषायों की वजह से सोया है। कषायों की तीव्रता में उपादान सो जाता है, कुछ सूझता नहीं। कषाय तीव्र हो भैया तो न धर्म सूझता है न कुछ सूझता है। अब लोग की तीव्रता आ जावे तो कमावे बैठ जाओ, कुछ न धर्म सुन रहे। मायाचारी आ जाए तो उसी में लगे रहते, मायाचारी में वही विचार चलाता रहेगा, ऐसा करूंगा फिर ऐसा करूंगा फिर ऐसा। अहंकार आ जाए तो हर जगह मुझे सम्मान मिलेगा तो जाऊंगा, सम्मान नहीं मिलेगा तो नहीं। और क्रोध कषाय की तीव्रता हो जाए तो फिर तो समझाए तो अपन कहां, अपने आपे में नहीं रहते। आपे में रहने का नाम ही उपादान की जागृति है, और आपे से बाहर हो जाने का नाम उपादान सोया है। इसको कहते नींद आना अलग बात है, और कषाय से युक्त जो उपादान है वो सोया है, और जिसकी जितनी मंद कषाय है वो उतना जागृत है। तो अपन को क्या करना चाहिए? कषाय मंद करने के उपाय सवेरे अपन ने चर्चा करी थी कि कषाय कैसे मंद होती है। अच्छी संगति करो, अच्छा स्वाध्याय करो, इन सब चीजों से अपने और हमेशा विनय रखो, तब जो है हमारे अंदर कषाय मंद रहेगी तो चार बातें अच्छी सूझेंगी। ये उपाय है भैया उपादान को जागृत करने। यदि किसी व्यक्ति के कारण निरंतर परिणाम संक्लेशित हो रहे हो फिर भी उसी के साथ रहना पड़े तो फिर क्या करना चाहिए? ए भैया देख वो सुन वो बंद कर दे, जो इंदु इंद्रियों को काम खत्म कर, मैं देखे मैं भोंके मैं सुनी मैं कछु कही, अनदेखा और अनसुना कर दो बस। जिसके साथ 24 घंटा रहना और उसी से संक्लेश हो रहा है तो ने भैया उस तरफ देखो, क्योंकि देखने से संक्लेश होता और सुनने से संक्लेश होता, सो दोनों को की तरफ से करने दो, जिसको जैसा करना है सो करे, अपना अपना फल वो स्वयं भोगेगा। मैं काय को व्यर्थ में जो है उनका हिसाब किताब बनाऊं, उनको लेकर के मैं विकल्प करूं। अपन स्वयं ही विकल्प करते हैं तो और विकल्प होना शुरू हो जाते हैं। अपन सोचते कि अपन सबको सुधार है, तो भैया अपने को तो सुधार नहीं पा रहे, अपन दूसरे को का सुधार है, हैं? अपने अपने मन पे तो अपना बस नहीं है, दूसरे पे बस का है? अपन सुजन हमारा का हमारे अनुसार चले, अरे भैया अपन ही खुद तो जो सोच ले सो अनुसार नहीं चल पा। सुबह सोचत के आज हम गुस्सा न करें तो संजय तक कर ली, बताओ अपने मन पे अपनो बस है तो अपन सोचत के हमारा का हमारे अनुसार चले वो चलेगा, वो अपने अनुसार चल वो को मन है। तो ऐसा ही अपन को विचार करके संतोष धारण करना चाहिए, तो ही संकलेश। भैया प्रश्न तो एकदम आज जा रहे और तो समय थोड़ी रहते है, वो 10 मिनट नहीं रहते। अच्छे मित्र में कौन कौन से गुण होना चाहिए, अब ये तो बहुत लंबी बात है। हाँ, कल्याण मित्र, छोटी सी परिभाषा बता देता हूँ जो आगम में लिखी है। सच्चा मित्र वो है जो कि विपत्ति में भी साथ नहीं छोड़े और सदा कल्याण का मार्ग बताता रहे अपने मित्र को, सो समझना सच्चा मित्र। और खीर में तो सौंझ और महेरी में न्यारे, तो ऐसा मित्र कोई काम का नहीं है, है? हाँ, जो कि सुख दुख सब में साथ देवे और हमेशा हमारे हित का मार्ग हमें बताता रहे, यही मित्र में कम से कम ये गुण दो होना चाहिए। श्रावक हो जिनमें कितने का अवसर करना चाहिए, मुनि महाराज की 28 है। देखो भाई, श्रावक को भी देव दर्शन करते समय का अवसर करेगा, स्वाध्याय करते समय का अवसर करेगा, मुनि महाराज के दर्शन करते समय का अवसर करेगा, भोजन इत्यादि ग्रहण करते समय का अवसर करना चाहिए, क्यों वो भी संयम है। और रस परित्याग कर रहा हूं तो नियम ले लिया, रस आज मेरा एक रस का त्याग भगवान अनुकार कर दो। दान देते समय भी का अवसर करो, बहुत अच्छा, जितने 6 आवश्यक हैं सब में कायस्कर पूर्वक करो, तो यही तो अपने आप हो जाएंगे। देखो स्वाध्याय करने बैठे होगी कायस्कर, देव वंदना करने आए कायस्कर करें, महाराज के दर्शन कर रहे कायस्कर करें, इस तरह से 6 आवश्यक के समय। लेकिन निश्चित संख्या नहीं है भैया, जैसे मुनि महाराज की 28 संख्या है, ऐसी कहीं श्रावक के लिए संख्या नहीं लिखी, पर वो करना चाहे तो इस तरह करें। आचार्य श्री कहते के सुबह शाम श्रावक को 5-5 माला फिरो के, कम से कम हाँ 5 माला फिर 50 मिनट आराम से 2 घड़ी बैठ करके, तो 1 माला में कितने का अवसर, 12 का अवसर हो गए, वो 5 माला भी तो कितने हो गए, 7-7 का अवसर हो गए एक बार में सुबह शाम, तो इतने करना चाहिए। साधु भी करते हैं, 28 तो अलग ही करते हैं, तो तीनों संध्या की सामायिक में कम से कम 5 माला उनको भी फेंकना चाहिए, साधु को भी तीनों संध्याओं। और श्रावक अगर नहीं करे तो 1 घड़ी करे भाई, 1 माला तो फेरे कम से कम, सुबह 1 माला शाम को इतना तो करनी चाहिए। बाजीराज महाराज को कुछ रोग हमेशा के लिए दूर हो गया था क्या? हाँ भैया, लिखा तो यही है कि उनका कुछ रोग हमेशा के लिए इस के पाठ करने से और दूर हो गया। हाँ, दर्शनावरणी कर्म से नींद आती है, आती तो है, लेकिन जब रात में नींद आती तब सबको दर्शनावरणी का उदय है क्या? और वो के बिना तो आती नहीं है, सही है, रात में भी, रात में क्यों, दिन में भी। अब भी अपन को दर्शनावरणी कर्म को उदय है, ये समझना। अब कौन कर्म ऐसे नहीं जो उनको उदय नहीं हुए, वो तो अपना पुरुषार्थ है कि अपन जगे हैं, काय अभी सोने को समय नहीं है। ऐसा अपन को मालूम है कि अभी सोने का समय नहीं है, और अगर अभी जो है अपन चाहें तो लेट जावे तो अब नींद आ जाएगी, उदीर्णा हो जाएगी। उदय तो हमेशा चलता है, लेकिन उदीर्णा होती है तो उसका फल दिखने लगता है, वैसे फल नहीं दिखता। अपन को अभी क्रोध का उदय हो सकता है, लेकिन उदीर्णा हो जाए अब कहीं को करना, अपने मन की विपरीत बात कह दे तो कहीं बन जाए, क्या कह रहे ढंग से बात किया जाए ऐसा आ जाएगा, भाई क्रोध आ जाएगा, क्यों उदय तो चल रहा है, लेकिन अपन जो है पुरुषार्थ के द्वारा उसको कम करे रहते हैं। तो दर्शनावरणी रात ही मैं कहा हूं भैया, वो तो दिन में भी रहता है, है? नार की जीवों के दर्शनावरणी कर्म को उदय रहते हैं, लेकिन कभी सो नहीं पाते वे हमेशा मारी थारी में ही लगे, हाँ मारपीट में 24 घंटे एक मिनट की चैन नहीं है, सांस नहीं ले रहे वे उससे, तो कहा उनके दर्शनावरणी नहीं आता है उनके, लेकिन उनको उस तरफ उपयोगी नहीं है, उसी में लगे रहते हैं। बहने लोग जो है आजकल भाई लोगों जैसे कपड़े पहनने लगे तो उसमें दोष लगता है क्या? लिखा तो है कि हम जो है अपने वेद की वजह के अनुसार और वेशभूषा में पहने तो फिर हमारे लिए अशुभ वेद का बंध होगा। जो जिसकी वेशभूषा है उस वेशभूषा को छोड़कर अन्य किसी की पहनेगा तो उसके लिए दोष तो लगता है, ये कर्म का बंध होता है उससे। उसमें लिखा हुआ है कि जो 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 है अगर अपने छोटे से छोटी बिटिया है तो उसको बिल्कुल उसके कपड़े पहनाए रहता है पुरुष के, तो उसको बंध अलग होगा। और जो कोई अपने बेटी नहीं होती है और छोटे से बेटे कोई फ्रांस पहना करके और उसको गुड़िया बना करके रखता है तो उसके स्त्री वेद का बंध हो जाए। हाँ ऐसा जो है लिखा उसमें। अब तो भावों के ऊपर भी निर्भर करता है। हमने जो है 10 साल के लिए कोई भी चमड़े की वस्तु नहीं उपयोग में करेंगे, उसका त्याग करते हैं। मैं उद्यन बाबू 10 साल ठीक जित तो करो तो ही अच्छो, हम तो कहते एक बिना हूं करो वो तो भी अच्छो। अरे हाँ करो तो हिम्मत तो करी कम से कम कि हमने छोड़ रहे हैं, छोड़वे के भाव तो आए। अब जी इतने सारे प्रश्न हैं। अच्छा मेरा पत्ता गोभी का त्याग फूल गोभी का है कि नहीं? पहले पहले फूल गोभी को करो फिर पत्ता गोभी है। हाँ ठीक बहुत अच्छा। ये भैया अपना अपना 9 बार नमोकार पढ़ते जाना है। हम जो है गौशाला के लिए 1 रुपये का दान रोज करेंगे, ये समझे। और जब भी अपन दान करें तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। हाँ अपने पास ही रखते जाओ, अभी तो उनने पेटी वगैरह रखी नहीं कहीं भी गौशाला की, तो जब रखेंगे जब आते लग, अभी अपने पास आज ही से शुरू कर दो कि रोज का 1 रुपये, और 1 रुपये निकाल के रखो तो 9 बार नमोकार पढ़ो। ऐसे नहीं कि 30 दिन में 30 रुपया दे दें, उतना लाभ नहीं हुई, हम लाभ तो रखता बता रहे रोज 1 रुपया और 9 है अब रख जे है। अब अपन कहते हैं इतने बेईमान आदमी को पैसा चाहने भी नहीं है जो भूल के नहीं दे रहे। जब रखें जब रखें जब उन्हें डार दियो, अब जब 1 रुपया आपको देना है हाँ रखो। हमने तो इस दृष्टि से कहा कि 1 महीना के खर्चे रखो तो एक ही बार दान के भाव बने और इनमें तो रोज रोज बने बने कि नहीं। 1 रुपया मेरा गौशाला को 9 बार नमोकार कर दिया। हमने मंडी वगैरह में किया था, 1 मुट्ठी अनाज बचाएंगे रोज। 1 मुट्ठी अनाज की कीमत थी उसमें 15 पैसे, तो 15 पैसे रोज गुल्लक में डालना है। 10,000 रुपये इकट्ठे हो गए थे साल भर में पूरे समाज से, अबे भी रखे हैं उससे ले। अब गौशाला हो गई तो उस गौशाला के लिए वो राशि अभी तक उसमें सबका भाव है कि हमारे भी 1 मुट्ठी बचाया है रोज आटा, 1 ग्रास से आटा 1 मुट्ठी, ऐसा मान करके 1 ग्रास कम खाएंगे और वो निकाल करके देंगे तो रोज रोज त्याग का अलग खर्च है। इसलिए कह रहा हूं वैसे अगर कोई भूल जावे किसी दिन 1 रुपया डालना तो भैया दूसरे दिन 2 डालो, अगर पूरे 30 दिन के 30 रुपये देने तो वैसे दे दो, कोई वैसा नहीं है कहने का है। और कोई है त्याग वाला? अब ये तो सब जो है ये प्रश्नों के उत्तर तो कल दे पाएंगे क्योंकि बड़े बड़े हैं। इस तरह बचपन से नहीं सिखाता, हमारे माता पिता हमारे साथ सिखाते हैं कि दूसरे के बेटे पर परिणाम भी हो सकते, वो परिणाम हमारे जीवन में भी हमें लाना चाहिए। वर्णी जी के जीवन के उदाहरण हमने आपको बहुत से दिए, वर्णी जी के जीवन के उदाहरण के अलावा भी और बहुत से उदाहरण हमने आपको दिए। परिणाम जिसके जितने अच्छे होंगे उसके संबंध भी उतने ही अच्छे निर्मल होंगे, दया के होंगे, करुणा के होंगे और प्रेम के होंगे। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम होना ये तो बहुत दुर्लभ है, सब जीवों के प्रति प्रेम तो महापुरुष ही कर सकते हैं, हम और आप तो बहुत मुश्किल है कि सबसे प्रेम रख सकें, पर फिर भी वो विस्तार होता चला जाना चाहिए। किसी से भी हमारा संबंध हो अगर तो अच्छा हो, दया का, करुणा और प्रेम का हो, जहां ईर्ष्या और द्वेष हो उन संबंधों को हम जरा सा ठीक करने की कोशिश करें। और मैं आपको वो दो तीन घटनाएं सुना के और अपनी बात पूरी करूं, समय आपका बहुत संक्षिप्त है। महाराज का संयम, सागर जी महाराज का मन है कि वो आपको कैलाश यात्रा, वो कह रहे हैं कि थोड़े ओड़े महीने निपटाओ, 5 मिनट में हमें तो थोड़ा उनकी अगर यात्रा का आपको मन हो तो फिर डिसाइड करेंगे। वो घंटे भर में कैलाश यात्रा जो उन्होंने जिस तरह की थी वो सुनाने का उनका मन है, समय देख करके आपको और बताएंगे कि कब वो करेंगे। आप जाते ना सोच रहे थे कि कल जा रहे महाराज, नहीं अगर आप सोच रहे हो तो हम वैसे ही सोचे, हम भी सोच रहे हैं कल बाजार है आपको मतलब इसे नहीं तो ठीक। अब देखो अब वही बिल्कुल तुरंत के तुरंत झूठा बोल गए अपन, कईयों ने कोई से हमने कहे हैं मन में तो भीतर भीतर चली न जाए, चली न जाए सुबीरें में चली जाए, 4-5 किलोमीटर की सुनी है कि 4-5 किलोमीटर सुबीरें भी जा सकते वो बस्ता तो बनाई सी गए हैं, थोड़ी तैयारी सी भी लग रही है। वो महाराज ने आज सुबीरें जो है किताबें भी 2-4-5 लोगों को दई है, अब तो समय कोई हो, अब हो सकता है सब चल तो सब रहो, बता कोई नहीं रहो क्या नहीं रहो, मन तक सब अंदर अंदर। और हमने पूछी से बहुत जल्दी कह दी कि नहीं हम ऐसा सोचेंगे ना कि आप जा सकत कल, ये जो है सही, लेकिन देखेंगे जैसा भी होगा। तो मैं अपनी बात पर फिर से वापस आपको 2-3 छोटे छोटे से उदाहरण दे करके, उदाहरण कभी अपने मन में रह जावें और कहीं और कभी काम आ जावें तो उनका उपयोग कर लेना। जैसे कि वर्णी जी का उदाहरण है कि वे चले आ रहे थे और यहीं बंडा से और सागर या कर्रापुर से सागर तरफ जा रहे थे। अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से इस घटना को बताते हैं, चले जा रहे हैं और एक गरीब व्यक्ति दिख गया तो उसको अपनी चादर दी। अब भैया उस गरीब आदमी से उनको का स्वार्थ है, कोई स्वार्थ नहीं है, है? उस गरीब आदमी से फिर चादर देने की चादर अगर दे दी तो कौन सा भाव है फिर, है? उसने प्रेम का करुणा का भाव है, इसका मतलब अब उससे उस गरीब आदमी से कौन सा संबंध जोड़ लिया उन्होंने, फौरन बन गया उनका संबंध, बिना बनाए बन गया संबंध। और वो उन्होंने उसको चादर दे दी, अब चादर दे दी सो माने बेहते छुटलक जी हैं, अब चादर दे दी 10 प्रतिमा हती, अब अकेली लंगोट बची, अब अच्छी नहीं लगा अकेली वो में चले जा रहे। तो जो उनके साथ में एक और ब्रह्मचारी हती के लिए जो का करो तुमने कभी हंसो अच्छो लगे सागर में चले अपन लोग नाव धरें के काके हैं, वो भाई जी मिल जे हैं तो भी काके हैं रास्ता में
सुकल्ले के अभ्यास करो अब दे तो दवाई है अब अपन इतने रास्ता में सामाई कर ली तना कंधी आरो पूजे सो चली चल कूद देकर है तो अब ये क्या चीज है वहीं बैठ गए और वहीं सामायिक कर ली संध्या हो ही गई थी सामायिक कर करा करके देर तक सामायिक करके 7:30-8 बजे घरे पहुंची सुबाई जी तो मंदिर से लौट के आई थी सो बिल्कुल दरवाजे उनने सोची थी कि भीतर घुजे हैं और चदरा ओढ़ लें तो कोई ने कह पे कछू सो मगर बाई जी ने देख लिया और देख करके समझ गई कि इन्होंने चदर भी आज किसी को दे दिया ये कौन कर सकता है ये जिसके मन में संबंध इस तरह के बनाने की भावना अरे हम तो दूसरे के जो है छीना छपटी करने की भावना रखते हैं ये जो देने का भाव है ये जो प्रेम का भाव है वो बहुत मुश्किल और वो भी जिसको आवश्यक है उसके लिए देना एक व्यक्ति के ने अपना लिखा संस्मरण कि वो तीर्थ यात्रा को गए तो तीर्थ यात्रा में वहां पहुंचे भारी भीड़ थी उस स्थान पर सब लोग दर्शनों के लिए पहुंचे थे स्थान मिलना बहुत मुश्किल था बड़ी मुश्किल से रात 12 बजे जाकर के भी ठिकाने लगे और एक स्थान पर धर्मशाला में उनको थोड़ी सी जगह मिल गई पूरा परिवार था हैं बच्चे हैं उनकी जीवन साथी है जैसे तैसे करके सामान रख लिया लेकिन इतनी यात्रा की वजह से और उनकी जीवन साथी का स्वास्थ्य जो है वो पहले से ही थोड़ा गड़बड़ था और गड़बड़ होना शुरू हुआ उल्टी होना शुरू हो गई अब वहां किससे क्या कहें कि दवाई तो रखें थे दवाई खिलाने के लिए दूध तो 2-4-10 जगह पूछा तो वहां पर जो है होटल में कहीं भी किसी ने 12 बजे रात को कौन दूध देता है तो फिर अब क्या करें आसपास में जो है थोड़े आगे बढ़ करके एक घर में रोशनी थोड़ी सी दिखी द्वार खटखटाया वहां के लोग आए उनने लिखा कि वो व्यक्ति आकर के सबसे पहले पूछते कि आपको क्या आवश्यकता है इतनी रात आपने जो है और अपने दरवाजे पे कौन आ जाए हो कोजी तुम है और इतने रात को तुम्हें शर्म नहीं आती कि हम लोग सो रहे हैं और तुमने जगा लिया ऐसा कहेंगे अपन जी अपन कौन सा संबंध बना लेते तुरंत देख अब जी दूर देख इससे मालूम पड़ जाता कि आप कैसे हो दूसरे को नहीं अपन को खुद मालूम पड़ जाता कि हम कैसे हैं कि जब किसी का काम अटके तो हम कैसा व्यवहार करते हैं और जब हमारा अटकता तो हम दूसरे से कैसी अपेक्षा रखते कि जो हमारे संगे हैं सो व्यवहार करे और जब दूसरे का अटकता तो हम कैसा करते हैं इससे मालूम हम आत्मा आत्मा की ओर ज्यादा नहीं जानते हम तो ये जानते हैं कि ये आत्मा के परिणाम हैं इन आत्मा के परिणामों को अगर गौर से देखें तो मालूम पड़ जाएगा कि हमारी आत्मा कितनी निर्मल भई और कितनी मलिन है अनादिकाल से मलिन है इस जीवन में निर्मल भई कि नहीं परिणाम संबंधों से परिणाम मालूम पड़ जाते हमारे व्यवहार से मालूम पड़ जाते कि हम तुरंत क्या रिएक्शन करते हैं जो भी हमारे प्रति एक्शन होता है उसका हम क्या रिएक्शन करते हैं ऑल ऑफ सडन एट द मोमेंट बाद में संभाल लेते हैं ये बिल्कुल अलग बात है पर एट द मोमेंट हम क्या रिएक्शन करते हैं इससे मालूम पड़ता है कि हमारा अपना संस्कार क्या है हमारा अपना नेचर क्या बना लिया है हमने तो उन्होंने जो है फौरन आके लिखा कि 12 बजे रात को वो पूछ रहे हैं कि आपको कोई आवश्यकता पड़ गई क्या कोई विपत्ति आप पे आ गई जो आपने अनायास हमको जगाया तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि हाँ सचमुच हम बहुत दूर से आए हैं और बामुश्किल तो हमें जगह मिली है और जीवन साथी की तबीयत खराब हो गई उनको थोड़ा सा दूध चाहिए अरे तो तुमने क्या इसको अपना पराया घर मान रखा है क्या वहां क्या आवश्यकता थी वहां रुकाने की ले आओ सबको यहीं ले आओ देखो तो अनजान जगह में और कोई ऐसा व्यवहार कर सकता है जी किसने सिखाया होगा उस व्यक्ति को व्यवहार और वो पूरे सब परिवार वो उस व्यक्ति खुद जाकर के और ये मना कर रहे कि नहीं हम सबको क्यों लाए हमने तो रख जगह मिल गई नहीं सबको यहीं लेके आओ रुकना भले ही वहीं रात में लेकिन दूध तो यहां पर पियोगे सो कहते हैं कि वो सबको लेकर के आए और अकेले जीवन साथी को नहीं दोनों बच्चों को भी और हमारे लिए सबके लिए और थोड़ा बहुत जो भी रात में खाने योग्य था वो उन्होंने दिया और कहने लगे कि आप हमारी तो भावना थी कि यहीं सोते वहां कहां सोएंगे पर आप नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं लेकिन सवेरे की चाय और नाश्ता आपको यहीं आकर के करना है पहले जीत जीत और हमारी इस तरह मदद करी भाई ऐसे निर्मल परिणाम ऐसे उदाहरण बहुत हैं एक युवक जो है हैं और का उदाहरण हमने ये दोनों एक साथ पढ़े थे वो एक आता है उसमें धड़कन में आस्था और फांस आती उसमें पड़ा था ये, और कोई नई बात नहीं है, उसमें आपने देखा होगा। तो उसमें वो वृद्ध वो चला जा रहा है युवक, एक दूसरा उदाहरण सुना रहे, हमने तीन की कही थी सो दो हो गए, एक और रहेगा भाई बस फिर खत्म कर दी, उसमें कोई बात नहीं फिर सुना देंगे। तो वो चला जाता युवक उसमें और एक वृद्ध आ गए, बहुत बुजुर्ग कप रहे थे वो है? तो उनको वो सीट पे बैठा था तो वो सीट से उठ करके खड़ा हो गया और उन वृद्ध को वहां पर बिठा दिया। बाकी सब लोग जो है, कोई लोग हिराकत की नजर से देखने लगे कि जी बने बड़े मानवतावादी, कई जने व्यंगी भी करत, कोई अच्छो करे तो दिक्कत है, तो कई लोगों को यही लगा जी बने बड़े खड़े हो गए खुद। एक ने व्यंग किया, कहा कुआए तुम्हारे ससुर साहब तो नहीं देखो है? नहीं, अपने परिणाम देखना कि ऐसा अपने मन में भी आता है कि नहीं आता। किसी का अगर अपन अनायास उपकार करो तो उसको लगता है कि इनका कुछ स्वार्थ होगा, किसी से अगर प्रेम से बोलो तो उसको लगत के बड़े मीठे बोल रहे, कछु चालाकी है भीतर। देखो तो समय कैसा हो गया, आज जो है कोई व्यक्ति अच्छा बनना चाहे, अच्छा होना चाहे, तो भी व्यक्ति जो है उसको अच्छा होने में प्रोत्साहन नहीं करेगा, बल्कि जो है उसको बुरे की तरफ ही बढ़ा देगा, सहयोग नहीं करेगा। और वो व्यक्ति एक बुजुर्ग ने बहुत प्रेम से उससे पूछा कि क्यों बेटे, ये तुम्हें संस्कार किसने दिया? जो दूसरा वृद्ध बैठ और जब युवक ने खड़े होके, जबकि आज का युवक तो खड़े क्या होगा किसी के लिए, बहुत मुश्किल है। यहां के युवकों की बात नहीं कह रहा हूं, यहां के युवकों को मैंने बहुत गौर से, मैंने शुरू में कहा था जब आया था कि थोड़ा सा 11 साल के बाद आया हूं, थोड़ा परिवर्तन लग रहा है, लेकिन उस समय मेरा मन ही ठीक नहीं था। दरअसल मैं आज इस चीज को बहुत स्पष्ट बोलता हूं, कहीं कोई वो नहीं, मेरा मन ही ठीक नहीं था शायद उस समय, इसलिए मैंने सोचा था कि युवक कैसे हो गए यहां के 11 साल बाद। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, इनके भीतर आज भी वही सब है, प्रेम है, लेकिन बीच का गैप बहुत हो गया, दूरी बहुत हो जाने से, और उनके भीतर जो है वो भावना बंद पड़ गई। लेकिन अब हम देखते हैं सुबह से, अरे कमंडल में पानी भरो मिलो है, मगर जा तो देखो कि पहले आन के पानी कमंडल में कौन ने गर्म करके भरो है। पानी तो तुम्हें अपने भरते, तुमने कही पानी तो वो कमंडल है खड़ा, तुमने कहा कि फलानी चीज वो खड़ा हुआ, क्यों कैसे खड़ा, किसने उसकी ड्यूटी लगाई थी, किसने कहा था कि इतने पैसा दें, और वो अपने मन से आता, ये कम सी बात नहीं है। इसके लिए आप लाखों रुपया खर्चा करते तो कोई नहीं आता सवेरे 5:30 बजे के गर्म पानी, हमारा कर्तव्य। वो दीदी है वो कैन सवेरे से हम देखते उनको, ऊपर हम दर्शन करते रहते भी, अपनो कैन भर के वहां गर्म कर कि अब 9:30 बजे जाते महाराज पानी, ये क्या चीज है। मैं झूठी प्रशंसा नहीं करता, ये चीज हमारे जीवन में आखिरी समय तक हमें याद रहेगी। ये दो चीज, जो चीज कही जैसी कही वहां पर हाथ पर खड़े, जितने समय कह दिया कि इतने समय नहीं आना तो नहीं आना, अबे महाराज जी काम कर रहे अपना, फिर 5 मिनट बाद खोलियो सब बाहर खड़े शांति, ये क्या चीज है। कहते भैया वृत्ति सच्ची यही है जिसमें हम साधु के अनुकूल, उनके धर्म ध्यान के अनुकूल वातावरण बना देते हैं। पंडित जी कह रहे थे कि हमें सबका आभार करना, हमने कही हम आभारी हैं, आप आभार करो चाहे न करो, जिसने सेवा करी है उसने तो पाया ही है, लेकिन हमारे धर्म ध्यान में आपने जितना सहयोग किया है ये हम भूलेंगे नहीं। आप ध्यान रखना इस चीज का, अगर हम ईमानदार हैं तो हम इस चीज को नहीं भूलेंगे। हमारे 6 माह तक हमारे अपने, हम जानते हैं कि हमने अपने शरीर पर किस तरह की विपत्ति और मन पर झेली है, उस सब में आपने जितना सहयोग किया है उतना जो है हमारे घर में हमारे परिवारजनों ने भी नहीं किया होगा, ये हम आपसे कहें। तो ये जो प्रेम है ये प्रेम का संबंध है, ये हमेशा रहेगा जिंदगी भर, जहां रहूंगा वहां पर हमारे महाराज जी हैं, ये कौन कहता आज अपना किसको कौन कहता है आज के समय हम जाए तो इसलिए भाई वो जो हम यहां के नवयुवक की बात नहीं कह रहे उस नवयुवक ने क्या जवाब दिया था वो नवयुवक कहता है कि बुजुर्ग जी किसने संस्कार दिया ये तो हमारे बड़े लोगों ने संस्कार दिया यही तो उम्र है जबकि मैं दूसरों की मदद कर सकता हूं जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा तो दूसरों की मदद चाहूंगा पर अभी तो मैं युवक हूं इसलिए दूसरे की मदद ही मेरा कर्तव्य ऐसा उस नवयुवक ने जवाब दिया था ये उसने संस्कार पाए होंगे ये उसने अपने संबंध निर्मित किए हैं हम भी जहां जाएं भैया सबके हृदय में अपने लिए जगह बनाएं और अपने हृदय में सबके लिए स्थान दें इससे बड़ा और कोई संबंध नहीं हो सकता है और सबके हृदय में प्रेम का संबंध बनाएं घृणा का संबंध ना बनाएं और चीजें हैं उनका जितना आवश्यक है उतना ही सदुपयोग करें और सबके प्रति मेरे मन में और अच्छा ही सबके प्रति अच्छा भाव है आप भी जो है सबके प्रति अच्छा भाव रखना सीखें अगर कोई पूछे कि क्या उपलब्धि है तो यही उपलब्धि है कि हमारा मन पहले जरा जरा सी बात में खराब हो जाता था अब हम अपना मन जरा जरा सी बात में खराब नहीं करते अपने परिणाम हम जल्दी संभाल लेते हैं महाराज ने हमें और नहीं सिखाया यही सिखाया कि परिणाम बिगड़ने लगे तो जल्दी से संभाल लेना अपने परिणाम क्योंकि ज्यादा देर तक परिणाम खराब करेंगे तो खोटी गति बनेगी इस तरह जो है अपने परिणाम अच्छे बना करके अपने जीवन का कल्याण करें इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु और विद्या सागर मुनि महाराज
दर्शन की ये राज लिए मैं।